ओम शांति। स्मृति की लव को सभी जागृत करें, अविनाशी ज्योतिर्मय चेतना रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। हम सभी चलते हैं एक लंबी यात्रा की तरफ, एक अंतर यात्रा, एक अतीत की यात्रा, एक दिवाली की यात्रा। चलते हैं उस कालखंड में 35 साल पहले 27 तारीख अक्टूबर मास 1981 बहामास की रात, वह कार्तिक की रात, वह दीपावली की रात, मैं आत्मा पहुंच गई हूं दिव्यता से आच्छादित अरावली पर्वत श्रृंखला में, ज्योतिर्मय मधुबन में। सारा संसार दियों से जगमगा उठा है, परंतु आज मधुबन में एक दिव्य अलौकिक आभा है। सारा मधुबन चेतन दीपकों से जगमगा उठा है। मैं आत्मा पहुंच जाती हूं उस विशाल सभागृह में, उसी मेडिटेशन हॉल में, जन जन से मुझ आत्मा ने स्थूल दीपक जगाए, स्थूल चित्रों के साथ जड़ चित्रों के साथ दीपावली मनाई। आज मैं आत्मा द बैठी हूँ इस सभाग्रह में। इंतजार है इन आंखों को उस दीपराज का, चारों फरिश्तों की महफिल, चारों जागृत दीपक, और ऐसी सभा में स्वयं परम ज्योति महाज्योति का आगमन, गीत बज रहे और दादी के तन में वह निराकार वह दीपकों का राजा प्रवेश कर रहा है। जैसे ही बाबा प्रवेश होते हैं, बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। अव्यक्त महावाक्य उच्चारण हो रहे हैं। इन आंखों से भगवान को देख रहा हूं, इन कानों से वही दिव्य वाणी सुन रहा हूं। वह बोल अव्यक्त है, आज दीपकों के मालिक अपने चैतन्य दीपकों को देख रहे हैं। स्मृति की लव जगाए सभी आत्माएं बैठी है। जो दूर है उन्हें बाप दादा सम्मुख देख रहे हैं, जो नीचे उन्हें अपने नैनों में देख रहे हैं। स्वयं दीपराज दीपराणिया यह बेहद की दीपमाला इस संसार में ऐसी दीपाली, इस संसार में ऐसी दीपमाला और कहीं नहीं। अविनाशी ज्योति स्वरूप हमारा ज्योति की बधाई, बाप दादा सभी को दे रहे हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं मैं आत्मा बाप दादा के एकदम सम्मुख हूं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। बच्चे सदा अमर भव। इस वरदान को मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं। जन जन से आत्मा की बुझी हुई ज्योति पुनः जल उठी है। बाप दादा आज सभी के मस्तक पर जागती ज्योत देख रहे हैं। बाप दादा के आगे आज साकारी और आकारी सभा हाजिर नाजिर है। चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। इस प्रथम वरदान को पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई हूं। जो मेडिटेशन हॉल प्राणियों से भर गया है, देश के साथ साथ बाप दादा विदेश के बच्चों को भी देख रहे हैं। अव्यक्त महावाक्य उच्चारण हो रहे हैं। सागर के बच्चों को यह हद की दीवारें नहीं समा सकती, चाहे कितना भी बड़ा हॉल बना, सागर समान हो जाएगा। देख रहा हूं आकाश में चार तत्व देव रूप में उपस्थित है, धरती आकाश जल वायु और देखते ही देखते एक सीमाहीन भवन का निर्माण हो गया है, एक महान कक्ष का निर्माण। जिस कक्ष की चार दीवारें चार तत्व है, यहां कोई स्थूल छत और दीवारें नहीं। ऐसा बेहद का ये हॉल निर्माण हुआ है, विश्व की सभी आत्माएं अपने पिता से मिलन मना रही है। कैसा अद्भुत है यह मेला, कैसा दिव्य है यह मिलन। प्रकृति के पांच तत्व हलचल में है, चारों ओर से हलचल की आवाजें सुनाई दे रही है। फिर से बाबा मुझे सामने बुला रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। बच्चे तुम प्रकृति जीत हो, यह दूसरा वरदान पाकर मैं फरिश्ता स्वरूप धारण कर रहा हूं, उड़ रहा हूं आकाश की ओर। आज इस संसार में भक्त आह्वान कर रहे हैं धन की देवी का, संसार की आत्माएं लक्ष्मी का आह्वान कर रही है, और प्रकृति स्वयं मेरा आह्वान कर रही है। देव रूप में उपस्थित प्रकृति के पांचों तत्व मुझे सहयोग की माला पहना रहे हैं। जहां प्रकृति के मालिक होंगे, जब तुम प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। देख रहा हूं तूफान आ रहा है, महसूस कर रहा हूं धरती हिल रही है, परंतु हे ब्राह्मण आत्माओं, बाबा कह रहे हैं जहां तुम ब्राह्मण आत्मा हो, जहां तुम्हारा पाव हो, जहां तुम्हारा स्थान हो, वहां तुम सदैव सुरक्षित हो। वहां सूली है, यहां काटा, वहां चिल्लाना है, यहां अचल। सुनाई पड़ रहा है दसों दिशाओं में एक ही आवाज, कैसा अद्भुत यह दृश्य है। जहां एक तरफ प्रकृति का तांडव नृत्य है तो दूसरी ओर परमात्मा प्रत्यक्षता, चहुओर आवाजें आ रही है, धन्य हो, धन्य हो, मैं फरिश्ता आकाश में हूं, सुन रहा हूं आत्माओं की पुकार, ओहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। सुनाई दे रही है आत्माओं की पुकार, आपने पाया हमने नहीं पाया, गवाया। चारों ओर से आत्माएं भाग भाग कर आ रही है, बाबा के महावाक्य सुनाई दे रहे हैं, बच्चे तुम्हारा ये स्थान अश्लम बन जाएगा और तुम विधाता के बच्चे, विधाता और वरदाता बन जाओगे। भाग भाग कर आत्माएं आ रही है, मैं फरिश्ता देख रहा हूं आत्माओं की ये तीन संगठन। एक तरफ वो आत्माएं हैं जो सहयोगी थी, दूसरी तरफ वो आत्माएं हैं जो इंतजार करने वाली थी, तीसरी तरफ देख रहा हूं वह आत्माएं हैं जो इस यज्ञ की विरोधी थी। यह तीन दृश्य, यह तीन विजन साक्षी होकर देख रहा हूं इन सहयोगी आत्माओं को, यज्ञ के आदि से अंत तक इन आत्माओं में सहयोग की भावना थी। कार्य अच्छा है, कार्यकर्ता अच्छे, परिवर्तन का यह कार्य अच्छा है, ऐसी शुभ भावना वाली यह आत्मा है। ऐसी ये सहयोगी आत्माएं, ईश्वरीय कार्य की सहयोगी, आत्माएं स्वयं अपनी भावनाओं का फल पा रही है और अविनाशी आश्रय का अनुभव कर रही है। दूसरी ओर मैं देख रहा हूं उन आत्माओं को जिन्होंने इस यज्ञ का परिहास किया, ऐसी इंतजार करने वाली आत्माएं जो कहती थी देख लेंगे क्या कार्य है, क्या पाया है, दूर से देख रही हूं। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, विश्व कल्याणकारी हूं और इन आत्माओं को शुभ भावना की श्रेष्ठ कार्य करने की किरणें प्रदान कर रही हूं। अब मेरी आंखों के सामने एक भयंकर दृश्य दिखाई दे रहा है। ये यज्ञ की विरोधी आत्माएं जल रही है, तड़प रही है, पश्चाताप कर रही है। मैं शीतला देवी हूं, रहम दया और कृपा की शीतल छींटे इन आत्माओं पर डालकर उन्हें शीतल कर रही हूं। मैं वरदानी हूं इन सभी वैर से युक्त आत्माओं को वरदान दे रही हूं। भक्त भवा, ये सभी विपक्षी आत्माएं अब अंतिम भक्त बन रही है। विश्व बंधुत्व का भाव मेरे अंदर जागृत हो रहा है। अब मैं फरिश्ता पूर्ण स्वरूप का आह्वान कर रहा हूं। मेरी ही संपन्न स्थिति मुझ में समा रही है। यह धनवान भव की स्थिति मुझ आत्मा में समा रही है। धीरे धीरे ये दृश्य भी लोप हो गया। पुनः इसी मेडिटेशन हॉल में बाप दादा के सम्मुख मैं आत्मा उपस्थित हूं। सूक्ष्म वतन से मेरी आंखों के सामने मम्मा और बाबा उपस्थित हो गए। चैतन्य होनहार लक्ष्मी दीदी और दादी को देखकर, सभी दादियों को देखकर खुश हो रही है और धीरे धीरे यह सभागृह एक राज दरबार में परिणित हो रहा है, जहां पर सिंहासन है सजे सजाए, अष्ट देवताएं जो यहां साथी है वो वहां सिंहासनधारी हो गए, जो यहां समीप है जो वो वहां समीप हो गए, जो यहां सेवा की सीट के नजदीक है वो वहां नजदीक हो गए, जो यहां तपस्या के और सेवा के आसनधारी है वो सदा सिंहासनधारी हो गए। कैसा अद्भुत दृश्य है, जो सदा साथ है हर कर्म में, चरित्र में, शहर में, राज्य में, पढ़ाई में, अलौकिक जीवन में, किशोर जीवन में, बचपन में, आदि में, अंत में, ऐसे बाप के याद के साथ ही वहां भी साथी हो गए। कैसी यह अद्भुत दिवाली है जो हम आत्माएं जगत पिता और जगदम्बा के साथ मना रहे हैं। अंतस में दिव्य आलोक भर रहा है, जन जन का अंधकार दूर हो रहा है। अब यह दृश्य भी लोप हो गया और बाबा हम सभी आत्माओं को लेकर सूक्ष्म वतन पहुंच गए। बाबा आप मुझे तीसरा वरदान दे रहे हैं, बच्चे तुम सदा एवर रेडी हो। मनसा में एवर रेडी, संकल्प धारण करने में, स्वभाव संस्कार बदलने में, संस्कारों के परिवर्तन में और संबंध संपर्क निभाने में, देख रहा हूं बाबा मुझे एक दिव्य रास दिखा रहे हैं और कह रहे हैं बच्चे तुम्हें सदैव रास करनी है, आपस में और बाप से संस्कारों की रास मिलानी है। बाबा के सामने मैं संकल्प कर रहा हूं आज से सदैव यह श्रेष्ठ रास मिलाऊंगा। फिर बाबा मुझे नीचे ले आ रहे हैं। आज दिवाली घर घर में, मंदिरों में लक्ष्मी की पूजा। बाबा कह रहे हैं लक्ष्मी के साथ बच्चों तुम्हारा भी पूजन हो रहा है, तुम गणेश हो, शिव पुत्र गणेश। बाबा मुझे तिलक दे रहे हैं, बच्चे बुद्ध बुद्धिमान भव। नॉलेजफुल भव। विघ्न विनाशक भव। इस वरदान को पाकर मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं और स्वयं से रिपीट कर रही हूं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। हर परिस्थिति, हर वातावरण, हर वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली, बाबा मुझे दिखा रहे हैं बहुत की रचना सूरज, और कह रहे हैं बच्चे तुम्हारी हद की रचना, यह हद का सूरज अंधकार को मिटा देता है, तो तुम तो बेहद के मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम इन सभी विघ्नों को हटा दो, अब मैं आत्मा जा रही हूं परम धाम, स्थित हूं अपने अनादि स्वरूप में, निर्बंधन देह का बंधन, स्वभाव का बंधन, संस्कारों का बंधन, सभी बंधन समाप्त हो गए। मैं अपने अनादि स्वरूप में स्थित हूं, बाप समान निर्बंधन। फिर आ रही हूं नीचे इस देह में वापस भ्रुकुटी तख्त पर। मैं अवतार हूं, अपनी याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाली मैं एक चैतन्य आत्मा, एक चेतन दीपक। ओम शांति। संसार की आत्माएं स्थूल दिवाली मनाती है, और हम कौन सी दिवाली मनाते हैं? चैतन्य दिवाली। एक ऐसी दिवाली जिसमें आत्मा ही जग जाती है, आत्मा ही जागरण का अनुभव करती है, एक ऐसे चेतन स्वरूप का अनुभव जिसमें सारा अंधकार, सारा तिमिर खो जाता है। तो आज हम सभी ने कौन सी दिवाली मनाई? ऐसी ही चैतन्य दिवाली। मजा आया सभी को इस चैतन्य दिवाली में? तो ये दिवाली एक दिन की नहीं। कैसी है ब्राह्मणों की दिवाली? हर दिन की, हर समय की, हर घड़ी की, हर सेकंड की। ब्राह्मण जीवन अर्थात ही कौन सा जीवन है? उत्सव का जीवन है। हर समय उत्सव है, हर समय खुशियां ही खुशियां है। तो वह आत्मा की जागरण की अवस्था अर्थात दिवाली। एक छोटी सी घटना हमें याद आ रही है। एक अंधा व्यक्ति एक दिन अपने मित्रों के घर गया दावत के लिए, और बातों बातों में आधी रात हो गई। और जब आधी रात हो गई और ये अंधा व्यक्ति कहता है कि अब मैं जाना चाहता हूं, तो उन मित्रों ने कहा कि जा तो रहे हो, परंतु जाते समय ये लालटेन लेकर जाना, क्योंकि अंधेरा बहुत है। वो व्यक्ति कहता है, अरे मुझे लालटेन से क्या प्रयोजन, मैं तो अंधा हूं, मेरे लिए दिन क्या और रात क्या, एक ही है। परंतु वो मित्र नहीं मानते और कहते हैं कि तुम्हें ये लेके जाना पड़ेगा, कम से कम तुम तो नहीं पर जो लोग तुम्हें देखेंगे, इस प्रकाश को देखेंगे, वो तुमसे टकराएंगे तो नहीं, कम से कम इसलिए इसे ले जाओ। तब कहीं जाकर वो अंधा व्यक्ति मानता है, वो लालटेन लेता है और चलता है अपनी राह। 100-200 कदम चलने के बाद अचानक एक व्यक्ति उससे टकराता है जोर से। उसे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि उसके हाथ में तो दिया है, लालटेन है, और उसे अपने मित्रों की ही बात याद आती है और कहता है कि शायद मित्रों का वो तर्क झूठा था। तो उस व्यक्ति से यह अंधा व्यक्ति पूछता है, क्या भाई तुम भी अंधे हो? क्या पूछता है कि क्या तुम भी अंधे हो? मैं तो अंधा हूं ही, मुझे दिखाई नहीं देता, पर तुम तो देख सकते हो ना, क्योंकि मेरे हाथ में तो प्रकाश है, क्या तुम भी अंधे हो? तो वो व्यक्ति क्या कहता होगा, क्या उत्तर दिया होगा उस व्यक्ति ने? क्या कहेंगे, क्या उत्तर दिया होगा? वो भी अंधा है? नहीं, वो अंधा नहीं है। वो व्यक्ति अंधा नहीं है, लालटेन तो जली हुई थी। हाँ। वो दूसरा व्यक्ति कहता है, भाई लालटेन तो तुम्हारे हाथ में है, परंतु दिया बुझ गया है, दिया जो पहले जला हुआ था अब बुझ गया है, हम चल तो रहे हैं ज्ञान को लेकर अपने साथ, ज्ञान का दिया तो है और इस बात का अभिमान भी है, विश्व को जानने वाले हैं हम, जो आज की मुरली में बाबा ने कहा तुम गणेश हो, तीन लोक तीन काल त्रिमूर्ति के नॉलेजफुल ऐसे तुम हो, परंतु इस ज्ञान मार्ग की राह पर चलते चलते क्यों फिर हम बार बार टकराते हैं एक दूसरे से, क्यों फिर बार बार टकराते हैं और क्यों फिर बार बार गड्ढे में गिरते हैं? शायद हो सकता है जो लालटेन हमारे हाथ में और जो दिया हमारे हाथ में है वो बुझ गया है, क्योंकि जो व्यक्ति होश में है, जो व्यक्ति जागृत है, वो कभी गिरता नहीं, वो तो सदैव अलर्ट कॉन्शियस, इस जागरण की चौकसी की अवस्था में, इस सजगता की अवस्था में रहता है, सजगता में गिरना नहीं होता है। यदि हम गिर रहे, यदि हम टकरा रहे, और हम टकरा भी किससे रहे, हम गिर भी कहां रहे, एक ही गड्ढे में बार बार गिर रहे, एक बार गिर गए उसके बाद भी अनुभव तो हो गया कि गिरता है, गिरते हैं, फिर भी उस में ही बार बार गिर रहे, कैसी ये विडंबना है। शायद ज्ञान का ये दीपक पूरी तरह जगा नहीं है, पहले तो ये स्वीकार करना होगा कि हम बुझे हुए दीपक हो गए हैं। कहीं ना कहीं बाबा ने आज की मुरली में कहा स्मृति की लव जगाओ, स्मृति स्मृति की लव, यही जागरण है, निरंतर जागरण, निरंतर दिया जलता रहा रहे, अर्थात आत्मस्मृति का दिया, आत्माभिमानी स्थिति। जैसे ही इस स्थिति से हम बाहर जाते हैं, जैसे ही इस केंद्र से परिधि की ओर जाते हैं और परिधि में गोल गोल घूमने लगते हैं, गलतियां होती है, यह केंद्र, यह आत्माभिमानी स्थिति ही जागरण की अवस्था है। बाहर परिधि पर केवल अंधकार है, और सारे दिन भर यदि हम वहीं घूमते रहे, सुबह भल केंद्र पर है, शाम को केंद्र पर है, पर दिन भर यदि परिधि पर इस पेरिफेरल इस सरकमफेरेंस में यदि घूमते रहे, तो फिर गिरना होगा, फिर हम बार बार गिरेंगे। इसके लिए सबसे पहले आज सारा संसार जब दिवाली मना रहा है, सारा संसार जब बाहर के प्रकाश से जगमग है, परंतु हर मनुष्य के हृदय में अमावस है। बाहर का कोई प्रकाश की एक किरण भी अंदर नहीं पहुंच सकती, चाहे कितने ही दिए जला लो, कितना ही प्रकाश कर लो, कितने ही बल्ब, कितनी ही लाइटिंग कर लो, बाहर का प्रकाश अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। अंदर का ये प्रकाश तो हमें स्वयं जलाना होगा, और जब तक ये प्रकाश नहीं जलता तब तक दिवाली हो नहीं सकती। यह दीपोत्सव, यह फेस्टिवल ऑफ लाइट, यह दीपक का पर्व नहीं हो सकता। हम इस धोखे में ना रहे कि बाहर दिए जला दिए तो दिवाली हो गई। हम स्वयं स्वयं को ही ना धोखा दे, स्वयं स्वयं को जगाना है, स्वयं स्वयं को जागरण की अवस्था में लाना है, और ये जागरण सतत हो, निरंतर हो, अहिर्निश हो, ऐसी कंटिन्यूअल कंटिन्यूअस जागरण की अवस्था का नाम दिवाली है। तो स्वयं स्वयं को याद दिलाना है कि मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। चेतना का जो दीपक बुझ गया है, बुझा हुआ दीपक अर्थात उदासी, दुख, कोई जीवन में विषाद, कोई उलझन, कोई हलचल, कोई विघ्न, बाबा ने आज की मुरली में कहा विघ्न की बातचीत भी ना हो, नाम निशान भी ना हो, यदि कोई दूसरा विघ्न डाले तो तुम विघ्न विनाशक बन जाओ। ऐसी विघ्न विनाशक स्थिति, ऐसी जागरण की अवस्था का नाम दिवाली है। बाबा ये दिवाली मनाना चाहता है। तो आज से और आज की मुरली से बाबा ने जो वरदान दिए हैं, अमर भव का वरदान, रोज इस वरदान को लेना है, रोज इस वरदान का अनुभव करना है कि मैं अमर जागती ज्योत हूं। धनवान भव का वरदान दिया है बाबा ने, मैं ज्ञान के खजाने से संपन्न आत्मा हूं। और जब तक आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान का मनन है, चिंतन है, अध्ययन है, आत्मा की ज्योति नहीं बुझ सकती। तो फिर बार बार स्वयं को जगाना है, स्वयं को जागरण में लाना है। इतिहास में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिखाया है महात्मा बुद्ध के जीवन में, दिखाया है कि एक ज्योतिषी, जो कि बहुत बड़ा ज्योतिषी था, एक दिन किसी वीरान जगह पर देखता है पदचिन्ह, और पदचिन्ह को देखते ही अपने ज्योतिष की सारी किताबें खोलता है और कहता है ये जिस व्यक्ति के पदचिन्ह है, फुटप्रिंट है, ये तो कोई सम्राट है, चक्रवर्ती राजा ही है। उस फुटप्रिंट में जितनी सारी सारे लक्षण जो दिख रहे हैं वो एक सम्राट के लक्षण है, और उसकी जितनी किताबें थी, जो कुछ उसके पास था, उसका जो ज्ञान था शास्त्रों का, उस हिसाब से वो कहता है कि मुझे इस व्यक्ति को ढूंढना है। और वो निकल पड़ता है उस वो जो फुटप्रिंट होते हैं उनकी तलाश में, ढूंढता है, कहीं दिखते हैं कहीं नहीं दिखते, पर ढूंढते एक जंगल पहुंचता है और वहां देखता है बोधियों का एक संघ है, और उसके बीच में महात्मा बुद्ध बैठे हैं, और देखता है उसी जगह पर उनके पदचिन्ह है, और वो पदचिन्ह को मिलाता है, फिर अपनी किताबें खोलता है और कहता है कि ये जो पदचिन्ह है किसी सम्राट के है। और बुद्ध के सामने नतमस्तक होता है और कहता है क्या ये पदचिन्ह आपके है? बुद्ध उससे कहते हैं हाँ, ये पदचिन्ह मेरे ही है। वो व्यक्ति देखता है इस व्यक्ति के चेहरे पर एक दिव्य आभा है, एक अलौकिक प्रकाश है, एक रोशनी है, परंतु ये फकीर के वेश में है, हाथ में तो जैसे एक भिखारी का पात्र है। तो उनसे वो पूछता है कि क्या तुम सम्राट हो? वो कहते हैं कि मैं सम्राट नहीं हूँ। वो पूछता है फिर तुम कौन हो, क्या एक राजा हो? वो कहते हैं मैं राजा नहीं हूँ। तुम कौन हो? वो कहते हैं क्या तुम गंधर्व हो? वो कहते हैं मैं गंधर्व भी नहीं हूँ। फिर तुम हो कौन? वो कहते हैं जो उत्तर दिया गया है, वो कहते हैं मैं एक जागृत चेतना हूँ। तो हम सभी फिर से उसी अपने जागरण की अवस्था में स्थित हो जाए। आत्मा के जागरण के लिए एक प्रकांड ऊर्जा की आवश्यकता है, और हमारी सारी ऊर्जा यदि बाहर जा रही है तो आत्मा जागृत नहीं हो सकती। जितनी ऊर्जा वस्तुओं में, व्यक्तियों में और बाहर की ओर बह रही है, इन सभी ऊर्जा को यदि रोक दिया जाए तभी आत्मा की यह ज्योति जागृत हो सकती है। बहुत पूर्व के जमाने में जब लोग समुद्र की यात्रा करते थे तब अपनी जहाज में कुछ कबूतर रखते थे। ये जो कबूतर थे वो पाल कर रखते थे, और जब बहुत दूर की यात्रा में निकल पड़ते थे और समुद्र के बीचों बीच होते थे और ये पता लगाना होता था कि धरती जमीन कितनी दूरी पर है, उन कबूतरों को छोड़ देते थे। यदि कबूतर वापस नहीं आता, इसका अर्थ जमीन आसपास है, शायद उस कबूतर को कोई आलंबन, कोई सपोर्ट, कोई भूमि, कोई झाड़ मिल गया है, फिर वो वापस नहीं आता। और यदि वो कबूतर कुछ समय के बाद वापस आ जाता तो समझते कि अभी जमीन बहुत दूर है। यदि उसे जमीन मिले ही ना तो वापस आ जाएगा। यदि इस चेतना को बाहर की कोई जमीन ही ना मिले, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, ना कोई साधन, ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा जिसको वो अपना आधार बना ले, तो इस आत्म पंछी को वापस फिर आत्म केंद्रित होना होगा। और जब ऐसा यह पंछी अंदर लौटता है तब वह प्रचंड ऊर्जा वहां प्रकट होती है, और इसी प्रचंड ऊर्जा से आत्मा की जागृति होती है, आत्मा का महाजागरण होता है। और इस जागरण की अवस्था में फिर कभी कोई विघ्न नहीं, कभी कोई गलती नहीं, कभी कोई गिरना नहीं, कभी कोई बेहोशी नहीं, कभी कोई मूर्छा नहीं। तो हमें अपनी सारी ऊर्जा को रोकना है और फिर से आत्म केंद्रित करना है। आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे दीपमाला के दीपकों को, ऐसे सर्व खजानों से संपन्न धनवान भव बच्चों को, ऐसे अमर ज्योति भव बच्चों को, ऐसे सर्व की शुभ भावना का फल देने वाले बच्चों को, ऐसे महादानी वरदानी आत्माओं को बाप दादा का, महाज्योति का, दीप राज का, दीपकों के मालिक का, दीप रानियों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी क्षमा, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।